الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. توحید کی چار قسمیں آپ نے سنی، مقامات میں سے چار مقامات کا نام آپ نے سنا، معیارات دین میں سے چار معیارات کا ذکر آپ کے سامنے آیا. اسی اعتبار سے آپ سمجھ لیجئے کہ مجاہدات بھی چار قسم کے ہیں، اور اس مجاہدے کے نتیجے میں حاصل ہونے والی چیز مقام کہلاتی ہے. اس مجاہدے کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہوگی، اسی اعتبار سے آدمی کے یافت اور شہود کا معاملہ متعین ہوتا ہے. یافت کے معنی پانا، شہود کے معنی دیکھنا. ایک چیز جو آپ اپنے اندرون میں محسوس کریں کہ ہاں یہ چیز مجھ سے حاصل ہو گئی، اس کی وہ یافت کہتے ہیں. اسی چیز کو جب آپ باہر دیکھ رہے ہیں تو اسی کا نام شہود ہے. اور یہ یافت اور شہود آدمی کی حقیقی حیات، حقیقی موت سے تعبیر کی جاتی ہے. حیات میں حیات یاد الہی سے، حیات میں موت غفلت سے. جو شخص اللہ کو یاد رکھے زندہ ہے، جو یاد نہیں رکھے وہ مردہ ہے. بلکہ حدیث شریف سنتے ہیں، چونکہ حدیث شریف ایک عرصے سے سن رہے ہیں، نتیجے میں جو ہے اس کو آسانی سے ایکسیپٹ کر لیتے. لیکن اگر یہ بولے تو ذرا صبح ہو جاتا صحیح ہے کہ نہیں ہے کہ بولے. تیری یافت اور شہود پر میری زندگی کا ثبات ہے، تیرا وصل میری حیات ہے، تیرا فصل میری ممات ہے. اس میں اہمیت بتائی گئی ہے اس کی جس پر آپ نے گزشتہ سنا. میں میرا جب تک چھٹا نہیں، خود سے نہیں گزرے بولے جیسے میں نے چھٹا، میرا نہیں چھٹا، جو خود سے گزرے نہیں. اب کبھی کبھار یاد رہ رہا میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مگر بار بار نہیں رہ رہا ہے تو میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں بولے تو یہ موت وقتی بھی. لیکن حضرت یوں فرما رہے ہیں کہ اس کی تکرار ہونا چاہیے. ہاں، خود سے گزر جانے پہ اصرار ہے کمال، یہ زندگی میں موت کا تکرار ہے کمال. ایک حقیقت کا پہلو ہے اور ایک عنایت کا پہلو ہے. حقیقت کے پہلو میں تو میت میت ہی ہے، موت موت ہی ہے. اور ایک یہ کہ صاحب سمجھ میں نہیں آتی تسلسل کی وجہ سے، مسلسل ہونے کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتی. اور ہمارا شعور، ہمارا ادراک، ہمارا فہم، ہماری نظر تو ایسی ہے. اب یہ پنکھا سر کے اوپر پھر رہا، اگر اس کے پھرنے کی جو رفتار ہے اس کے نتیجے میں اطراف میں گول دائرہ سا آپ محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ہے نہیں وہاں دائرہ. تو تسلسل سے گھومنے سے ایسا سمجھ میں آتا ہے. رسی کے کنارے پر تھوڑی سی روئی باندھ دیجیے، اس کو ذرا مٹی کے تیل میں، گیس کے تیل کو بولتے ہیں مٹی کا تیل، مٹی میں سے نکل رہا ہے مٹی کا تیل، اس کو آگ لگا دیجیے، شعلہ بنا دیجیے. اس کا دوسرا کنارا پکڑ کے ایسا گول تیزی سے پھرائیے، آپ کو شعلہ پورا گول دائرے میں دکھتا. گول دائرے میں شعلہ رہتا نہیں رہتا نا، مگر اتنی تیزی سے جب پھراتے ہیں تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے آگ کا گول دائرہ ہے، حالانکہ ہے نہیں ویسا. تو تسلسل کی وجہ سے ویسا دکھ رہا، وہ دکھنے کی جو کیفیت ہے نا وہ حیات کی ہے، مگر اس سے پہلے کی اس کی جو حالت ہے وہ کی ہے، मौत की हालत है वो, करंट मुसलसल आ रहा, मगर पीछे से करंट आ रहा ना, मुसलसल आ रहा, तो दिख रहा आपको कि मुस्तकिल चल रहा, हालांकि ऐसा नहीं है। हर चीज का निजाम ऐसा बनाया अल्लाह ताला, ये समझ में आता है। अदम वजूद, अदम वजूद का एक सिलसिला है जो चलता रहता है, और दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहने के बावजूद इत्तेसाल ऐसा है, बेतकय्युफ बेकियास लगा हुआ है एक दूसरे के साथ में। हर एक आदमी के सीने में एक मशीन है, पंपिंग करते रहे दिनों से, हरकत करा तो है बोले जैसे, मगर उसके दरमियान में नहीं बगैर हरकत की भी हालत आ रही नहीं आ रही। अल्लाह ताला निजाम कुछ ऐसा बनाए है, वो बोलना नहीं बोल के मरजल बहरे नहीं अल्तियान बेनोमा बरजफुल्लायन, एक साथ बह रहे हैं दो धारे, एक नकाइस का एक कमालात का लगा हुआ है एक दूसरे के साथ में ऐसा, कि कमाल कमाल ही है, नफस नफ्स ही है, अब्द अब्द ही है, रब रब ही है, तो सलसल है जो जारी है। सांस का निजाम भी ऐसी है, बाहर जाती अंदर आती, बाहर गई अंदर नहीं आई, तो उसका नाम क्या है, एक सिलसिला है जो जारी है। हर चीज को अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा ही निजाम बना रखा है कि आदमी भूले नहीं। इसी वास्ते मौलवी एतराज नहीं करना, उलमा हजरत ने हमारे मशायख ने इस किस्म की ताबीर करते हुए इरशाद फरमाया कि देखो कुरान शरीफ में ये आयत है, सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, चल रहा नहीं, मैं मौत भी देता रहता है, जिंदगी भी देता रहता है, तसल इस्तिमरार है ना जी, उसमें मुसलसल एक सिलसिला है जो चलता रहता है, मौत हयात का सिलसिला। तो उसको फरमा रहे हजरत इस जिंदगी में मौत का तकरार है, कमाल तकरार होते रहना, याद रहना, वो एक है हकीकत और एक है अपने अंदरून में उसका पाया जाना, उसका शुऊर रहना, वो बात याद रहना, उसका फहम रहना, वो है तकरार। उसी को बुजुर्गों ने यूं भी फरमाया, मौत आने से पहले मर जाओ, मर जाओ के वास्ते अरबी लफ्ज आती है मीम वाव ता वाव अलिफ मू तू, मर जाओ कब, कबल अन तमूतू, मौत आने से पहले मर जाओ। आप बोले जब बात समझ में नहीं आती तो क्या बोलते, मौत आने से पहले मरना तो खुदकुशी है, सीधा ठिकाना खराब है उसका, जहन्नम में है, खुदकुशी जायज नहीं है, इस्लाम में हराम है। क्या मतलब है फिर ये इसका, इसका मतलब वही है जो मतलब दूसरे बदले हुए लफ्जों में बुजुर्गों ने बयान फरमाया, कुन कल मैयत फी यदिल गस्सार, कौन माने हो जा, कल मैयत मैयत जैसा, कहां कहते हैं फी यदिल गस्सार, नहलाने वाले के हाथ में, इधर पलटा है पलटता नहीं पलटता, गर्म पानी डालो कुछ बोलता, ठंडा पानी डालो कुछ बोलता, अरे नरमी से हाथ सहलाओ कुछ बोलता, सख्ती से रगड़ो कुछ कहता है, कभी देखे नहीं देखे, गोला समझो पानी बहुत गर्म है, उफ नहीं करता, चू नहीं करता, उसकी वजाहत है उसमें कि ये मुंह तो कब लानता, मुंह तो क्या मतलब है, एक इख्तियारी मौत है, एक इजबारी, एक जबरी मौत है, एक कदरी इख्तियारी, चलो इल्म कलाम की इस्तेलाह में जबर के मुकाबले में कदर आता है। कहते हैं कि साहब जब आदमी के ऊपर मौत आ गई तो अब उसकी भी मर्जी बाकी है नहीं, दूसरे की मर्जी चलती है, उसकी अपनी नहीं चलती। असलाफ अकाबिर बुजुर्गों ने दीन यही कह रहे हैं, वो जबरी मौत के बाद कैसी हालत रहती, तुम्हारी भी मर्जी बाकी नहीं रहती, तो अपनी इस जिंदगी में इख्तियारी मौत तारी कर लो, यानी तुम्हारी अपनी मर्जी बिल्कुल छोड़ दो, साल में रखे ठीक है, कुशादगी में रखे, तंगी में रखे, मांगना नहीं, जो साल में रखे बस ठीक, मर्जी बाकी नहीं रहना। यह है मौत की तकरार, एक आध दिन ऐसा गुजार लेते बिल्कुल अपनी मर्जी कुछ नहीं, उसके बाद में एक दिन गुजार दिया अपनी मर्जी के बगैर, उसके बाद अपनी ही मर्जी चंद दिन, सिलसिला ऐसा चल रहा है इस वक्त। जाना है राइट को, एक कदम राइट को डाल रहा, चार कदम लेफ्ट को, कहाँ जाएगा आपको मालूम है कि कहाँ पहुंचेगा। सीधी तरफ बाग है, सरसब्ज शादाब इलाका है, बेहतरीन फल फूल है। एक कदम उधर डाल जो राइट की तरफ, दाएं तरफ बड़ा गड़ा है, एक कदम इधर डालना, चार कदम उधर डालना, कहाँ पहुंचेगा, गड़े में जाएगा ना। सीधी सी बात है, बिल्कुल तयशुदा। क्या हो रहा है, एक आध दिन छोड़ दे रहे हैं अपनी मर्जी, या एक आध दिन क्या छोड़ दे, एक आध मरतबा कोई चांस ऐसा आ गया तो छोड़ दे रहे हैं बस। जिस दिन ऐसा गुजर गया उस दिन तो दो रकअत नमाज शुक्राना अदा कर लूंगा, और आज मेरी अपनी मर्जी तो रहा ही नहीं, मैं आपकी मर्जी पे रहा बस। रोजाना सुबह में दुआ दुआ भी कर लगे, आज का दिन मुकम्मल आपकी मर्जी के मुताबिक गुजरवा दे। दुआएं बहुत करवाना चाहते लोग और करते भी हैं, ऐसी दुआएं ना करवाते हैं ना करते हैं। तो खैर, इस पर मुझे याद आया कि भाई ये खुद से गुजर जाना क्या मतलब है, उसका मौत के तकरार का क्या मतलब है। अब जो बात आपको सुनाई जानी है, या आप तो शुहूद के बारे में पाना और देखना, कोई मसला आपको मालूम नहीं था, मालूम हो गया, हाँ मिल गया मिल गया जी, चाहे दे बोले तो बोलते, देने का नहीं तो अंदर है। तो अब आप हजरात ने ये बात सुनी है कि याफ्त और शुहूद का एक मुस्तकिल अमल है जो एक सालिक को जारी रखना चाहिए। आयतों से है कायनात भरी, चलते फिरते पढ़ा करो कुरान। अगर इसका मुजाहिदा जारी रहा तो आदमी गफलत से निकल जाता, फिर आदमी को वसल हासिल होता है, और हयात में फिर हयात आती है, हयात जिस्मानी में हयात रूहानी आती है। अब मुजाहिदा चार किस्म का अपने को करने का है। पहला मुजाहिदा आसार में, अपने ऊपर नजर पड़ गई, जो भी अपनी जात से मुतालिक चीजें हैं तमाम ही चीजों के बारे में अपने अंदरून में ये बात पाई जानी चाहिए कि इसके मालिक, मालिक हकीकी अल्लाह ताला है। अगर ये कैफियत अपने अंदरून में पाई जा रही है तो इसे कहते हैं याफ्त। अपने से हटकर जितनी चीजों पर नजर पड़ रही है, हर हर चीज के बारे में हमारा देखना कुछ ऐसा हो कि उस अल्लाह इसके मालिक हैं, मालिक हकीकी हैं, ये याद रहे। तो सामने नजर आ गई इसके मालिक अल्लाह ताला है, तो ये शुहूद है इस मकाम का। देखना पाना खुदा को अनफुसो आफाक में, अनफुस बोले तो अपने अंदर, आफाक बोले तो अपने से बाहर। देखना पाना खुदा को अनफुसो आफाक में मेरी आदत है यही, मेरी इबादत है यही। हमारे बुजुर्गों का जो हाल था वो उन्होंने बयान फरमाया हमको तालीम के लिए, तभी जाके आप इस आयत के मिज़दाक बनेंगे ना, जिसमें बताया गया कि हमेशा हर हाल में अल्लाह को याद रखते हैं। अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामन वक़ूदन वअला जुनूबिहिम, और जिक्र के साथ साथ फिक्र का भी जिक्र गया है, वह तफक्करून फी खल्क़िस समावाती वल अर्ज़, और थोड़ी देर के बाद से फिक्र का कर लेना गैर मामूली फजीलत की चीज है। तो अपने से मुताल्लिक़ा चीजों के बारे में तवज्जो हुई, मालिक हकीकी इसके हक ताला। कायनात की चीजों पर किसी चीज पर नजर पड़ गई, मालिक हकीकी अल्लाह ताला। बहुत सारी बीमारियों से भी हिफाजत हो जाती, वरना क्या समझता आदमी मेरे पास नहीं है उसके है बोल के समझता, उसके नतीजे में बीमारियां पैदा होती, अखलाकी बीमारियां। जैसे मैं हाथ खाली हूं, वो भी असलन हाथ खाली है, दिखने से तो कुछ नहीं होता, कैशियर के हाथ में पैसे दिखते नहीं दिखते, कैशियर को देखे के भी बहुत कम लोग होंगे जो बैंकों को नहीं जाते, जब देखो मोटे मोटे कट्टे नोटों के पकड़ के गिनते रहता, देखेंगे आपके साथ जाने वाले लोगों में से कोई भी हसद नहीं करता उससे, करता हाँ वो भी नहीं करता हसद। अरे कह को नहीं करता भाई, मालूम है उसके लिए जी नहीं। अब कायनात की सब चीजें किसकी, अब हमारे को हासिल आना जैसे बात लोगों के बारे में कई को आ रहे, बोले तो मैं कहने ये है उसके ने है मैं कहने नहीं है, ऐसा समझ में आ रहा। हाथ खाली आदमी आता, हाथ खाली जाता नहीं जाता, लेके जाता साथ में कुछ भी नहीं ले जाता ना। आम आदमी हो के खास आदमी, रियाया हो के हुकुमरा, पब्लिक हो के बादशाह, सबके सब खाली जाते ना। अजीब किस्म की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया दुनिया की माल दौलत के लोग, रहने वाली चीज किसके पास भी है नहीं, असलन किसी की है नहीं। तो अपनी चीज की तरफ तवज्जो जाए, बाहर की चीजों की तरफ तवज्जो जाए, अपने अंदरून में अपने से मुतालिक चीज की तरफ तवज्जो हो तो इसके मालिक के हकीकी हक ताला है, इसका इस्तेहजार रखना और बाहर की चीजों में से किसी चीज पर नजर पड़ने पर इसके मालिक के हकीकी हक ताला है, इसका इस्तेहजार करना, यही है याब तो शहूद इस मकाम का, यही है मुजाहदा इस मकाम का, पहले मकाम का मुजाहदा ये है। लेकिन आपको मालूम है कि मुजाहदे मुजाहदे में फर्क रहता, सही ढंग से होना, सही नतीजा निकलना, सही नतीजा निकला तो मेहनत सही हुई समझना, सही नतीजा नहीं निकला तो मेहनत सही नहीं हुई समझना चाहिए। अचानक कोई पंखा बंद हो गया समझो, उसको फिरना बंद हो गया, फिर साहब उठे वो बटन खोल के देखे, वो बटन खोल के देखे, वो बटन खोल के देखे, उसको ऊपर कर रहे हैं नीचे कर रहे हैं, वहां का भी देख लिए, वहां का भी देख लिए, वहां का भी देख लिए, उसके उससे भी देख लिए, टेस्टर से कर डर नहीं आ रहा है सब कुछ, मगर वो पंखा चल रहा नहीं। समझना क्या चाहिए, मेहनत तो कर रहा बेचारा मगर सही रूप से नहीं हुई मेहनत। वहां के जो तार हैं उनका जोड़ तो सही है, लेकिन इसके सर के ऊपर जो दूध दो रहा है ना उनमें से एक तार में फॉल्ट आ गया। अब मेहनत उधर कितनी भी करो, पूरे जगह के डब्बे जाके पूरे बटन खोल के देख लिए तब भी सही नतीजा नहीं निकल सकता। बुनियादी जो काम है वो ये देखना चाहिए कि भाई नतीजा हासिल हो रहा कि नहीं हो रहा, नतीजा सही निकला तो समझना चाहिए कि मेहनत सही है। अब कोई दूसरा समझदार किस्म का आदमी जरा सीढ़ी मंगा के ऊपर चढ़ के देगा तो एक बार जरा निकल गया, उसको जोड़ते ही फिर घूमना शुरू कर दिया तो बोले ये देखो समझदार फंदा मालूम होता है। तो सही रुख पर मेहनत हो रही है कि नहीं हो रही है ये देखने के लिए नतीजा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखो। अब ये मुजाहदा पहले दर्जे का, आलम नासूत का, मकाम सालिहियत का जो मुजाहदा है वो सही रुख पे हो रहा या नहीं हो रहा वो देखने के वास्ते नतीजा देखो क्या है उसका। यही मकाम सबसे मुश्किल मकाम है समझ लीजिए आप हमारे अपने हालात के हिसाब से। अगर आपकी जबान से छूट निकला होना चाहिए कि मुजाहिदा सही रुख पर नहीं चल रहा, इस वास्ते कि इसके मालिक हकीकी अल्लाह ताला हैं का इस्तेहजार नहीं है। इसके नतीजे में आप अपनी मर्जी से खिलाफ हकीकत बात जबान से निकाल रहे हैं, उनकी चीज का इस्तेहजार होता तो उनकी मर्जी से इस्तेमाल करते, इस्तेमाल हम कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं, इधर तो उनकी चीज समझ के तो नहीं कर रहे। अगर उनकी चीज समझ कर करते तो उनकी मर्जी से इस्तेमाल करते, उन्होंने बताया कि मैंने जबान तो दी है लेकिन इससे झूठ नहीं बोलना है, और खास तौर से ईमान वाले के हक में तो इसकी बड़ी ताकीद है कि बस दूसरे किस्म की अखलाकी कुछ कमियां हो सकती हैं लेकिन झूठ नहीं बोलते, खिलाफ वाकया बात नहीं बोलते, थोड़ा सा नुकसान हो गया कोई बात नहीं, अगर झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाकी है कि कहाँ झूठ बोल सकते हैं, किसी की शदीद जरूरत पड़ गई तो किसी बड़े मौलवी से जाके पूछना। आमतौर पर इजाजत नहीं है, जैसे दो मुसलमान आपस में लड़ ले रहे हैं, तो कोई ऐसी बात जाके उसके सामने बोल दी है कि जो बोलने वाले ने बोली नहीं थी मगर उसकी तरह मनसूब करके बोल दिए, जिसके नतीजे में इन दोनों में मुसालाहत हो जा सकती है, ऐसी कोई जगह है तो निशानदेही कर देते मौलविया। वरना इसमें भी हकीकत कितनी है और अपनी नफसानियत कितनी है उसकी तमीज मुश्किल होती है, इस वास्ते उमूमी हैसियत से वो जगह भी नहीं सुनाई जाती। लोग सुनते कुछ हैं, समझते कुछ हैं, बहुत देखने में आता है। तो अमल सही हो रहा, मुजाहदा सही जारी है या नहीं, ये देखने के वास्ते ये देख लो कि मुझे जो जो चीजें हासिल हैं और मेरे पास हैं, उन तमाम चीजों का इस्तेमाल मैं चीजों के मालिक हकीकी की मर्जी से कर रहा हूं या नहीं। सबसे मुश्किल काम है गाना सुनने का, बादलों का शौक बहुत रहता, सुन रहा हूं समझो। तो समझना चाहिए कि जो चीज उसके पास है अल्लाह जल्ले शानहु की, वो अल्लाह की होने की हैसियत से मुस्तहज़र नहीं है, उसके नतीजे में गाना सुनता। किसी की कोई चीज जेब में जरा बाहर निकली हुई थी, एक है खैरखाही में उसको बोल देना कि साहब कीमती अमानत बाहर झांक रही है, जरा एहतियात कर ली। और दूसरे ये कि कोई मौका गनीमत जान के ऐसा से बाजू बैठ के दो उंगलियां जेब में डाल के निकाल लेके अपने जेब में डाल लिया सब। तो ये जो दो उंगलियों का इस्तेमाल हुआ, सही हुआ गलत हुआ, इसके मालिक हकीकी कौन है? अल्लाह ताला है। अगर ये उसे याद रहता तो गलत इस्तेमाल करता? तो इतना मुजाहदा करना, इतना मुजाहदा करना कि हर हर चीज का मेरी जात से ताल्लुक रखने वाली जितनी चीजें हैं हर हर चीज का इस्तेमाल सही होना, हयात का, इल्म का, इरादे का, कुदरत का, समात का, बसारत का, कलाम का, हाथ पांव का, दिल दिमाग का, हर हर चीज का इस्तेमाल सही हो। आसान काम है, मुश्किल है? बोलना नहीं हुई भी आसान रहता तो सब बोलते थे, बिल्कुल आसान है सब कर लेते थे, कोई भी नहीं बोल रहा। या नजदीक ज्यादा लोग नहीं आने की वजूहत में से एक वजह यह भी है, ये इतनी मुश्किल कौन करेंगे? ये लाइन से भागने के असबाब में से बुनियादी सबब यह है। वरना नफ्स ने, शैतान ने बेशुमार लोगों को धोखे में डाल रखा है कि वो दो चार अच्छे काम करवा के मुतमईन कर देता है कि मियां तुम तो बड़े दीनदार आदमी हो। आदमी भी खुश हो गया कि हाँ भाई, बाद लोग आते कहते हैं कि साहब वो नमाज भी पढ़ता हूँ और ये जिक्र भी सुबह में ये सूरा पढ़ता हूँ, दोपहर में ये पढ़ता हूँ, शाम में ये पढ़ता हूँ, इतना जिक्र करता हूँ, इतनी दुआएं पढ़ता हूँ, मगर उनको देखे तो समझ में आता कि बेचारे के पास में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम शान सुन्नत ही पास में नहीं है। मुतमईन हो गया वो अपने उस अमल से। दो चार दिन के काम करके आदमी मुतमईन होकर बैठ जाता है, उसका नफ्स भी उसे इत्मीनान दिला देता है और शैतान भी कहता है कि तेरे से ज्यादा इबादत गुजार है कौन अभी ये बस्ती में। मुतमईन होके बैठ जाता खाली, न सिर्फ ये कि मुतमईन होके बैठ जाता है बल्कि जो अमल अपन कर रहे हैं कोई दूसरा नहीं करा तो बोलते इसकी तो हालत बहुत खराब है जी, इसी के बारे में मत बोलो, अपनी हालत में जायजा ले लो। बेखौल एक शेर के जो जगह जगह लिखा हुआ है कैलेंडरों वगैरह में गालिबन, कीजिए हरगिज न सुनिए, ये ना का ताल्लुक पहले जुमले से भी है दूसरे जुमले से भी है। उर्दू से बच्चे वाकिफ नहीं रहते बोल के स्कूल वाले बच्चों को बताना पड़ता, कीजिए हरगिज न सुनिए दूसरों का तज़किरा, सबसे बेहतर है यही बोहतान और गीबत का इलाज। तो दो चार आमाल दीन इख्तियार करके आदमी मुतमईन हो जाता। हालांकि हमारे काबिल ने फरमाया, आदमी अपनी मुकम्मल जिंदगी में कभी भी अपनी इस्लाह से मुस्तगनी नहीं हो सकता। अपना जायजा लेते रहना मुस्तगनी, जरा भी फॉल्ट आया फौरन मुआलिज के पास जाके बता देना, थोड़ा मामला सही नहीं चल रहा। बहुत सारे लोगों को तो देखा कि गैसेस की तकलीफ शुरू हो गई तो सीधा बड़े बड़े दवाखानों में और दिल के डॉक्टरों के पास पहुंच गए, वही सहेगी गएगी। जबकि उनको मालूम है कि वो दिल के डॉक्टर के पास जाना पैसे खर्च करने का दिल रखने वाले का काम। थोड़ा सा एहसास हो गया दिल का मसला तो नहीं वहां से ले जाए। अब यहाँ के साहब दीन के मुख्तलिफ शोबों में कमी रोजाना देखने में आ रही और आदमी को अपने इलाज की अपनी इसलाह की कोई फिक्र ही नहीं है। तो अपनी जात से ताल्लुक रखने वाली हर हर चीज के बारे में ये सिलसिला जारी रखना कि इसके मालिक हकीकी हक ताला है, ये अल्लाह ताला की ममलूक है, इसका बार बार तकरार और सोच और फिक्र इस्तेजार जारी रखना। इस जारी रखने में दो कैफियतें होती हैं, कभी याद रहता कभी याद नहीं रहता। तो कोशिश ऐसी करना के याद गफलत पर गालिब आए, याद गफलत पर गालिब आ जाए, ये कोशिश जारी रखना। और इस कोशिश का जो मकसद है मुताल्लिका अशिया का इस्तेमाल सही होना, उसका एहतमाम करना। जब ये चीज हासिल हो जाए तो फिर उसके नतीजे में अनफुसी जेहद से आदमी को मकाम सालेहियत हासिल होता है, इसलिए कि उसके नतीजे में आदमी का अमल अमल सालेह बन जाता है। और जिसका अमल सालेह बन गया तो जाहिर है कि सालेहीन में शामिल हो गया। तो मकाम आसारी में मालिकियत इलाहिया का मुजाहदा अनफुसो आफाक में इस कदर जारी रहना कि उसके नतीजे में अपनी जात से ताल्लुक रखने वाली चीजें और बाहर से जो 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 चीजें ताल्लुक रखती हैं उन तमाम चीजों में उसके मालिक हकीकी हक ताला ही है, इसका इस्तेहजार रखना इतना ज्यादा कि अपनी चीज की तरफ तवज्जो जाए तो उनका मालिक होना याद आ जाए, सामने की चीज पर नजर पड़ जाए तो उनका मालिक होना याद आ जाए। तो यही याफ्त और शुहूद है समझ लीजिए इस मकाम। उसके नतीजे में हर हर शय का इस्तेमाल अपनी चीज के बारे में जब वो इस कदर मुहतात हो जाता है जो अपनी जात से ताल्लुक रखने वाली है कि इसको भी जब अल्लाह की मर्जी के खिलाफ में नहीं इस्तेमाल करता तो अब दूसरों की चीजों को कैसे इस्तेमाल कर सकता है जिसकी निस्बत दूसरों की तरफ है हक ताला की। अगर निस्बत जब दूसरों की तरफ है तो अपनी तरफ निस्बत रहने वाली चीज का इस्तेमाल भी जब गलत नहीं करता तो दूसरे की तरफ निस्बत वाली चीज का इस्तेमाल गलत कैसे कर सकता। अब इसका तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता आदमी, कोई किसी की जमीन दबा ले, कोई किसी का मकान दबा ले, कोई किसी की दुकान पे कब्जा कर ले, कोई किसी का माल हड़प कर ले, कोई किसी को धोखा देकर माल हासिल कर ले, तिजारत में गड़बड़ कर दे, कर सकता है बस। उसके नतीजे में आदमी का अमल सही हो जाता है तो उसके नतीजे में आदमी को मकाम सालेहियत हासिल होता है, ये मकाम है। फिर उसके नतीजे में एक और कैफियत आदमी को हासिल होती है कि कोई चीज गई तो गैर मामूली तौर पर गमजदा नहीं होता, कोई चीज आई हज से ज्यादा खुशी में मुब्तला नहीं होता। इसलिए कि जो चीज गई किसकी गई, मेरी गई तो मैं को गम, जिसकी थी उसके पास गई तो कहेगा गम। उसको समझाने के लिए कहते हैं कि कोई साहब आए, नहीं साहब मैं गांव से आया, यहाँ पे अटेंड भी करूंगा ये यहाँ की मजलिस, सुबह में उठ के जरा हैदराबाद शहर में जाके कुछ जरूरी जरूरी चीजें खरीदूंगा, मगर अब यहाँ रात की जगह अजनबी मकाम, मेरे जेब में 25,000 रुपए हैं, यहाँ मुस्तकिल रहने वाले कौन है, निशानदेही करे फलाने साहब है, उनको दे दीजिए जरा ये अपने पास में रख लीजिए, सुबह में जाते सफर ले लेंगे जाते। तो सुबह में वो 25,000 रुपये में जा रहा हूँ साहब शहर में, मेरे वो 25,000 रुपये दे दो, तो दे दिए। तकलीफ हुई कुछ, इस रंज हुआ क्या? कहो जी, रंज होता खुशी होती, खुशी हो जाती है। क्या काम लगा दिया था मेरे को पूरी रात 25,000 रुपये की हिफाजत का, बजाय रंजीदा होने के वो तो कहेगा कि साहब चलो सुबुक दोष हो गया, वो मेरे कंधे जो बोझल हो गए थे अब वो हल्के फुल्के हो गए, दोष बोले तो ये, सुबुक बोले तो हल्का, मेरे कंधों पे जो बोझ था वो उतर गया। तो जिसकी चीज थी वो लेके गया तो रंज कहेगा, ये कैफियत आ जाती है। यही वजह है कि बुजुर्गाने दीन के पास में कोई चीज आ गई तो हद से ज्यादा खुशी में बेकाबू नहीं हो जाते, कोई चीज चले गई तो हद से ज्यादा रंजीदा होकर सीने नोचना, कपड़े फाड़ना, बाला बखेर लेना, चीखना चिल्लाना, गिला शिकवा शिकायत, ये कुछ भी नहीं होता। तमाम चीजों के बारे में, खाली पैसों के बारे में इस नहीं, किसी चीज की अपन मालिक की हकीकी है नहीं, जी आई तो हद से ज्यादा खुशी नहीं। अभी साहब कह लेंगे साहब उस शादी में कोई साहब ऐसा डब्बा लाके दिए करते, वो डब्बा भी तकसीम कर लेके फिर उन्होंने गाड़ी वाड़ी में ऑटो वाटो में रखने को जगह नहीं है तो ऐसा रखने के जा रहे हैं, ऐसा बहुत बड़ी चीज रखने के जा रहे हैं, ये मोटा डब्बा लाके दिए गए, उसमें एक चॉकलेट भी रखा हुआ है, खोल के देखे तो उसमें शादी का दावत नामा है। मालूम हुआ कि भाई एक रुपये कितने का, 200 रुपये का, भाई ऐसी क्या खुशी है जी। इत्तलानामा है ना, इत्तलानामा तो मामूली से खर्च में भी हो जा सकता, नहीं हो सकता, खुशी में भी काबू हो जाते हैं। कुछ लोग हमारे खुशी के 25 किलो 30 किलो का गुलाब का बोले वो फूलों का वो लेके आते, क्या बोलते गजरा हाँ? हार हार, वो हार लाते हैं समझते हैं उसमें जीत है उनकी, हालांकि हारे हुए रहते हैं। वो लाके हार गया, हार लाके हार गया, मुंह समझ रहा जीत गया, आदमी नहीं पहन सकते बल्कि गाड़ियों में पहना के ला रहे हैं। ये तो कोई समझ में आने वाली बात भी नहीं है ना, बिल्कुल भी अजीब गरीब किस्म का मिजाज है लोगों का। अगर अल्लाह पाक ने आपको माल दिया है तो कि अच्छे काम में लगाओ ताकि उनके दिल से दुआएं निकले और हमारी अपनी जिंदगी में कोई खैर आ जाए उनकी दुआओं की बरकत से। जैसे किसी बादशाह के बारे में وعدہ ہے کہ صاحب اس ایک گڑیا کی کسی گائے کو بادشاہ کے قریب کے کسی آدمی نے مار دیا تھا, صبح کر کے کھا گیا. بادشاہ گزر ہونا تھا تو گڑیا وہ پھول کے پاس میں جا کے ٹھہر کے کہتے یہاں سے گزریں گا تو بادشاہ کو بولوں گی. بول بادشاہ روک کے بولی گئی, میرا جو فیصلہ ہے یہی پھول پہ کرنا. کیا قصہ کیا ہے, ایسا ایسا ہوا بہت اچھا, اس کے بدلے میں تمہارے کو اتنی گایاں دے دیں گے, یہ دے دیں گے, وہ دے دیں گے, سب دے دیا. گڑیا کے دل سے دعا نکل گئی کہ مولا اس نے مجھے میرے ساتھ میں فضل کا معاملہ کیا ہے, عدل کا نہیں. عدل تو یہ تھا کہ ایک گائے کے بدلے میں ایک مل جاتا, اس نے مجھے تو بیشیوں کا یہاں دلا دی. مولا اس نے میرے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے فضل کا معاملہ کیا ہے, عدل کا نہیں. مولا کل تو قیامت کے دن اس کے ساتھ بھی فضل کا معاملہ کر دے. تو دعائیں تو لی جاتی ہیں. مقام آثاری میں, مقام صالحیت میں, توحید آثاری میں مجاہدہ اللہ جل شانہ کو مالک پانے کا, اللہ جل شانہ کو مالک دیکھنے کا, اس جہت سے ہونا کہ مجھ سے تعلق رکھنے والی اور مجھے نظر آنے والی چیزوں میں سے جو میری ذات سے خارج ہے ان میں سے کسی بھی شے کا استعمال غلط نہیں ہونا, اس پر یاد آیا گی. دوسروں کی چیزیں ہڑپ کرنے کا سوال ہی کیا پیدا ہو سکتا ہے. اس کے نتیجے میں مقام صالحیت آدمی کو حاصل ہوتا ہے, اور محسوس کرنا اسی چیز کو کہ مالک حقیقی حق تعالیٰ ہیں, یہ اس مقام کی یافت ہے, اور دیکھنا کہ حق تعالیٰ جل شانہ ہی ان چیزوں کے مالک حقیقی ہیں, یہ اس مقام کا شہود ہے. اور اس کے نتیجے میں جو چیز آدمی کو حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ کوئی چیز ملی بہت زیادہ حد سے زیادہ خوشی میں مگن نہیں ہوتا, اور اگر کوئی چیز گئی تو بہت زیادہ رنجیدہ ہو کر پریشانیوں میں گرفتار نہیں ہوتا ہے. ان کی مرضی, بس زندگی گزارنا بھی آسان ہو جاتا. ابھی جتنی بے اعتدالیاں ہیں نا, فراخی میں حد سے زیادہ تجاوز, بیجا خرچ, فضول خرچی, اسراف, دکھاوا, ریا, شہرت طلبی, جتنی خرابیاں ہیں یہ سب کے سب اللہ کی دی ہوئی نعمت کے سلسلے میں مل جانے پر حد سے زیادہ خوش ہو جانے کا نتیجہ ہوتا ہے. حد میں نہیں رہتا پھر آدمی, اور کوئی چیز گئی تو جو پریشانیوں میں گرفتار رہتے ہیں, بڑے حالات خراب ہو جا رہے ہیں, جگہ جگہ سننے کو ملتا رہتا ہے, اخبارات میں آتا رہتا ہے, صاحب وہ نوجوان وہ رزلٹ اچھا نہیں آیا, بول کے پھانسی لے لیا, وہ نوجوان بار بار ہر کام میں رکاوٹ ہو رہی, قرض نہیں ادا ہو رہے, بول کے خودکشی کر لے رہا, کوئی جا رہا پٹریوں میں سے جا رہا, بعض بعض لوگوں کو برداشت نہیں ہو رہا, خود ہی مار لے رہے, دنیا بھی گئی آخرت بھی, اپنے کے لیے پریشانی کا مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے. اپن بالکل جیسے بچے رہتے نا ماں باپ کے حق میں, ویسے بن جانا پروردگار عالم کے حق میں. میرے کو بچے کو اپنے بارے میں جتنی فکر رہتی اس سے بڑھ کے ماں باپ کو رہتی نہیں رہتی. اب بچے میں سمجھ کم رہنے کی وجہ سے کبھی کبھی ذرا گڑبڑی زیادہ کرتا, مگر اپن بڑے ہونے کے نتیجے وہ گڑبڑی نہیں کرنا. اتنی سمجھ بچے میں نہیں رہتی کہ میرے کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو میرے لیے اچھی ہے, مجھے کوئی چیز نہیں دے رہے ہیں تو میرے لیے ٹھیک نہیں ہے, اتنا شعور اس کو حاصل نہیں ہے. اپنے کو تو اتنا شعور حاصل ہے کہ میرے مولا مجھے کچھ دے رہے ہیں تو میرے لیے خیر ہے, کوئی چیز نہیں دے رہے ہیں تو بھی میرے لیے خیر ہی ہے, اتنا شعور تو اپنے کو حاصل ہے نا. پھر اس طرح پریشانی گئی کی ان کے حوالے رہنا, بس تفویض تسلیم کا مزاج رہنا, انشاءاللہ العزیز عمل پورا صحیح ہوگا. دوسری چیز, دوسری توحید کی افعال کی ہے. اللہ جل شانہ فاعل حقیقی ہے, تخلیق فعل حق تعالی کی طرف سے ہوتا ہے, فعل کا استعمال بندے کی طرف سے ہوتا ہے, فعل کی تخلیق کی نسبت حق تعالی کی طرف کرنا, فعل کے استعمال کی نسبت بندے کی طرف کرنا, اس کو اصطلاح میں خلق فعل اور کسب فعل کہتے ہیں. نتائج کا مرتب ہونا کسب کے اوپر ہے, پیدا کی جانے والی چیز کا پیدا کرنا برا نہیں ہے, پیدا کی ہوئی چیز کا استعمال کی جہت سے اچھا یا برا بنتا ہے. جیسے چاقو کا بنانا, چاقو کا بنانا برا نہیں ہے, अब अगर उसको आने वाले मेहमानों के लिए सेब वगैरह काट के खिलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये फायदे की चीज है, नहीं आने वाला आया क्योंकि बोल के भोंक दी। तो अब कोई बोल सकते हैं बनाने वाला चाकू बनाया क्योंकि बोल सकते हैं, पैदा करने वाले फेल के हक ताला है और पैदा करना किसी चीज का बुरा नहीं है। इतनी खराब चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करना मना है शरीयत में, कभी कभी हमारे पास नौजवानों को ख्याल आ जाता है जो चीज मना है उसको पैदाइश कैको करे बल्कि ऐसा ख्याल आ जाता है। तो हमारे हजरत सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह का जवाब याद रखना चाहिए, पैदा करे ये देखने के वास्ते कि इसको मत इस्तेमाल करो, बोल रहा हूँ मेरी बात मानता कि नहीं मानता, नहीं इस्तेमाल करा तो जन्नत। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस चीज के जरिए से गोया जन्नत में जाने का रास्ता हमारा हो रहा। तो जी चीज चीजें मना है और सब के सब चीजें कह के वास्ते हो तो अपने को जन्नत में जाने के वास्ते हो, कोई चीज बेकार नहीं है, अल्लाह की रजा और खुशनुदी के हासिल होने का जरिया है वो चीज। वो चीज नहीं होती तो इम्तिहान कह का होता और बचने का जो अजर है वो कैसे मिलता। गुनाह से बचने का जो अजर है और गुनाह से बचने में जो महबूबियत है वो कैसे हासिल होती। अगर मौका गुनाह ना होता या सबब गुनाह ना होता, इसलिए कोई चीज हमारे हक में मुजिर नहीं है। इस वक्त जब ये नहीं बोलना, ये रहना ही नहीं था, बोल के नहीं बोलना। अल्लाह पाक ने जब फरमा दिया वनबलूकुम बिश्शर्री वल खैर, खैर शर के जरिए से हम तुमको आजमाएंगे, जब उन्होंने फरमा दिया तो वैसी सूरत में गोया उनके इम्तिहान के दो हिस्से हैं, एक बचने का हिस्सा एक करने का हिस्सा। करने के हिस्से को कर लेते, बचने के हिस्से से न बचते तो कामयाबी तो आधी मिलती। और ये जमाने में तो नेकियां कमाने का बहुत मौका है। पहले जमाने में एक गांव से दूसरे गांव में चले गए तो कोई दिखती नहीं थी, अब क्या एक गली से दूसरी गली नहीं जा सकते बगैर दिखी हुई जगह जी, हर जगह बचने का मौका मिल रहा। इसीलिए हजरत ख्वाजा अजीजुल हसन मज़ूब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैदान कारजार में दुश्मन के मुकाबले में तो मुजाहिद इस्लामी एक मरतबा जामे शहादत नोश करता है, लेकिन हम जिस दौर में हैं उसके नतीजे में हर हर कदम पर हमको अपने आरजुओं को कुर्बान करना पड़ रहा है, तो रोजाना सैकड़ों शहादतें मिल रही। मगर अपने अरमान का खून करना, अपने ख्वाहिश को दबाना मौका है खूब कमाने का, मगर चूंकि हम ज्यादा हिम्मत वाले नहीं हैं, हौसले वाले नहीं हैं, जरा जरा से मामले में फिसल जाने का डर रहता, इसलिए आफियत और खैर का माहौल मांगते रहना अल्लाह ताला से। लेकिन अगर ऐसा मौका आ गया तो ये समझना चाहिए कि मेरी कमाई का मौका है ये, वरना जो ये मौका आ रहा तो जो कुछ कमाई थी वो गवाही में तब्दील हो जा रही है। तो इस सिलसिले में जो दूसरा पहलू है दोस्तों वो है फेल की निस्बत का हक ताला की तरफ करना तखलीकन, और इस सिलसिले का मुजाहदा हमेशा जहां कहीं भी कोई फेल कोई हरकत नजर आए हक ताला जल्ले शानहु को इस हैसियत से याद रखना कि इस फेल के खालिक हक ताला जल्ले शानहु है। जब खालिक वो है तो जो खालिक होता है मालिक वही होता है। अब ऐसी सूरत में उस फेल के इस्तेमाल की जिहत मुतय्यन करने का हक उनको है, मुझे नहीं है। उस फेल का इस्तेमाल किसमें करना किसमें नहीं करना इसका तायुन उनके इख्तियार में है। अपन गलत काम करके ये नहीं बोलना कि इनको पसंद नहीं था तो मेरे को करने की कुव्वत ही नहीं देना था, ये एतराज सही नहीं। ऐसी सूरत में आजमाइश खत्म हो जाती, इम्तिहान बाकी नहीं रहता। मस्जिद को आना चाहे पांव हल्के फुल्के हो जाते, तेजी से हवाओं के दोष पर आ जाते, और सैंदी खाने को जाना चाहे तो पांव फीलपा हो जाते, उठाने को हाथ नहीं हो, इम्तिहान बाकी रहता था कुछ बाकी नहीं रहता। इसका जब मुजाहिदा हासिल होके हर हर मौके पर फेल की निस्बत हक ताला की तरफ करने का मिजाज होना, कपड़ा पहनने में हक ताला की तरफ, किसने पहनाया तो अल्लाह ने पहनाया, खाना खाने में निस्बत हक ताला की तरफ के किसने खिलाया तो अल्लाह ने खिलाया, पानी की निस्बत किसने पिलाया तो अल्लाह ने पिलाया, सोने की निस्बत किसने सुलाया तो अल्लाह ने सुलाया, बेदार होने की निस्बत किसने जगाया तो अल्लाह ने जगाया। ये जो दुआएं है ना ये सब तौहीद फेली की दुआएं हैं। इसका जब मुसलसल मुजाहदा चलता है तो फिर अपने अंदरून में पाए जाने वाली फेल का इस्तेमाल भी दुरुस्त होता है, اور باہر نظر آنے والے افعال میں تعالیٰ جل شانہ کی حکمت پر نظر جاتی ہے تو پھر آدمی کو مقام شہادت حاصل ہوتا ہے. آج اتنا ہی, انشاءاللہ تعالیٰ باقی کی بات پھر آپ کی خدمت پر رکھی جائے گی. اب تعالیٰ سے علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. صل وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله.